कर रहे हैं। जीवन हमारा अच्छा बनता है, हमारी दृष्टि की निर्मलता, आत्मज्ञान और अच्छे आचरण से। वो अच्छा आचरण कैसे हम बनाएं, उसके लिए आचार्य भगवंतों ने इतना ही कहा कि अपने मन, वाणी और शरीर का सदुपयोग करें तो आचरण अच्छा बन सकता है। हम अपने मन में खोटे विचार लाते हैं तो ये मन का दुरुपयोग है, शरीर से दूसरे का अहित करते हैं तो ये शरीर का दुरुपयोग है, और वाणी से दूसरे को कठोर शब्द, निंदनी और असभ्य वचन बोलते हैं तो वह वाणी का दुरुपयोग है। इस तरह यदि हम अपने मन, वाणी और शरीर को संभाल लें और उसमें भी मुख्य रूप से वाणी और शरीर तो हमारे मन के अनुसार ही क्रिया करते हैं, हम अपने मन को, हम अपने अभिप्राय को संभाल लें तो हम आसानी से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये हमने पिछले दिनों विचार किया है। मन में तरह तरह के विचार आते हैं और उन विचारों के पीछे मुख्य रूप से हमारी अज्ञानता और हमारी आसक्ति, वो ही हमें प्रेरित करती है। उस अज्ञानता और आसक्ति के चलते हम अपने जीवन में हिंसा, झूठ, इन सब कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। यदि हम अपने अभिप्राय में जरा सा परिवर्तन कर लें, बहुत छोटा सा परिवर्तन कर लें, इतना ही कि यहां इस संसार में सबके भीतर मेरे ही समान आत्म कल्याण करने की सामर्थ्य है, सब मेरे ही जैसे चेतनावान है, इसलिए सबके प्रति मेरा सद्भाव होना चाहिए। अगर ये इतना सा विचार धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाए, तो मैं सोचता हूं कि हम आसानी से सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। विचार करें, जिसे हम अपना मानते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में आत्मीयता होती है, लगाव होता है, क्या उसे हम दुख पहुंचाना चाहते हैं, या उसे दुख पहुंच जावे तो हम ही दुखी हो जाते हैं। तो देखने में और अनुभव में तो यही आता है कि जिसे हम अपना मानते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में आत्मीयता होती है, लगाव होता है, उसे हम कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहते, उसकी क्षति नहीं करना चाहते। हमारे मन में अहिंसा और दया अपने आप आ गई। जिसके प्रति हमारे मन में आत्मीयता है, क्या हम उससे झूठ बोलना पसंद करते हैं? क्या हम उसके साथ झूठा व्यवहार करना पसंद करते हैं? हम जिसे अपना मानते हैं, क्या उसकी चीजों को हड़पने, चुरा लेने, छीन लेने का हमारे मन में कोई मिथ्या विचार आता है क्या? क्या जिसे हम अपना मानते हैं उसके प्रति अपनी दृष्टि खोटी करते हैं क्या? उसके साथ हम दुर्व्यवहार करना पसंद करते हैं क्या? और जिसे हम अपना मानते हैं, क्या उसकी धन संपदा को अपने घर में संचित करना पसंद करते हैं? नहीं, हम तो अपनी संचित संपदा को भी उसे दे देने के लिए तत्पर हो जाते हैं जिसे हम अपना मानते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में आत्मीयता है। ये तो हमारे अपने थोड़े से लोग हैं जिनके प्रति हमारी आत्मीयता है, अपनापन का भाव है, रिश्ता है। और यही अगर सब प्राणी मात्र के प्रति हो जाए तो बताइएगा, जिसका प्राणी मात्र के कल्याण का भाव है, जिसके मन में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव है, क्या वो व्यक्ति कभी पाप में प्रवृत्त हो सकता है? बहुत स्पष्ट सी चीज है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, उससे ऐसा होना संभव ही नहीं है। ये अभिप्राय की जो निर्मलता है वो हमें पापों से बचा लेती है, और अभिप्राय का खोटापन ही हमें सुबह से शाम तक पाप में प्रवृत्त करता रहता है। हमारे मन में ये जो दूसरेपन का भाव है वो निकलना चाहिए। अदरनेस इज द हेल, किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने लिखा कि ये जो परायपन का भाव है वही नरक का कारण है। उसने तो लिखा है कि अदर इज द हेल, पर उसके मीनिंग है अदरनेस इज द हेल, दूसरा ही नरक है, यानी दूसरेपन का भाव नरक है। सबके प्रति मेरे जैसे ही आत्मभक्त सर्वभूतेषु, यह जो भाव है ये तो उदार चरित्र नाम है। जिनका जितना चरित्र उदार होगा, जो जितने चरित्रवान होंगे, वे ही ये कह सकते हैं कि आत्मभक्त सर्वभूतेषु, उदार चरित्र नाम वसुधैव कुटुंबकम्। उनके लिए है सारी वसुधा, अपना ही कुटुंब, अपने ही सब आत्मीय। उनका चरित्र जो है वो पाप से मुक्त होता चला जाता है। हम चाहें तो अपने आप को पाप से मुक्त करने के लिए सबसे आसान तरीका अपना सकते हैं। ये जो दूसरेपन की अनुभूति है वो हमारी हट जाए। सब दूर वही आत्मा जो मेरे भीतर है, और उतनी ही योग्यता वाली, उतनी ही क्षमता वाली जो मेरे भीतर है, जिसमें कि अपनी उस विशुद्ध परम परमात्मा दशा का अनुभव करने की सामर्थ्य वो सब जीवों के अंदर है। तब फिर दुकान पर बैठकर के किसी आने वाले से धन संपत्ति छीनने का, उसे धोखा देने का मन हो गया क्या? उससे झूठ बोलने का मन होगा? उसका मन दुखाने का की इच्छा होगी? संभव ही नहीं है। चाहे हम कहीं भी खड़े हों, दुकान में हो, चाहे फिर हम अपने घर में हो या बाजार में हो या मंदिर के भीतर हो, हमारे भीतर अगर ये भाव हम डेवलप कर लें तो फिर देखिएगा कि हमें बाहर से जो हम पापों के त्याग रूप आचरण अंगीकार करते हैं उसे भी हम बहुत अच्छे से अपने जीवन में पालन कर पाएंगे। वरना बाहर से भी हम पांच पापों का आंशिक या पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं और भीतर राग द्वेष और काशायक परिणाम हमारे बने रहते हैं, वो हमें फिर से उसी तरफ ले जाने में निमित्त बन जाते हैं। और कोई विशेष चीज नहीं है, ये जो दूसरेपन की अनुभूति है वही चोरी की तरफ ले जाने वाली चीज है। किस पर जरा सा विचार करें, दूसरा तो दूसरा है लेकिन दूसरे की चीज मेरी हो जावे, ये ना चोरी का भाव है। दूसरा मेरा हो जावे, दूसरा ही अपना हो गया, तब तो ये कहलाएगा दान। पर प्रीति करणम दानम, दूसरे की प्रीति प्राप्त करने के लिए या दूसरे से हमारे मन में दया और प्रेम का भाव उमड़ने पर अपनी चीज को देने का भाव आता है, और हमारे मन में दूसरे के प्रति, दूसरे की वस्तुओं के प्रति जो अपनेपन का भाव है वही तृष्णा और वही चोरी कहलाता है। इतने ही से जरा सा फर्क है, दान और चोरी में ज्यादा फर्क नहीं है। दान देने में दूसरे को हम अपना बना लेते हैं और चोरी में तो दूसरे की चीज को अपना बना लेते हैं, इतना फर्क है। हड़पने का भाव, नीतम वा पतितम वा सुविस्मतम वा परस्व नविश्रष्टम न हती न च अन्न दत्ते तदकश चोरिया उपायमनम। एक गृहस्थ भी किसी की पड़ी हुई भूली हुई पतितम वा, गिर गई भूल गया वो, सुविस्मृतम बिल्कुल से ही रख करके चला गया और ध्यान ही नहीं है, धरोहर जैसे रख देते हैं और भूल जाते हैं, तो नीतम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्व नविश्रष्टम। न स्वयं लेना दूसरे की वस्तु न दूसरे को देना, ये श्रावक के जीवन में बाहर से स्वीकार किए जाने वाला अचौर्यानुव्रत है। इतनी मोटी मोटी चोरी का त्याग तो एक सदगृहस्थ को भी कर देना चाहिए कि जो चीज हमारी नहीं है किसी और की है, गिर गई है या पड़ी हुई है रास्ते में या वो भूल गया है हमें दे करके, तो हमारा फर्ज है कि उसे हम लौटाएं, वरना हमें उसे ग्रहण करने या किसी और को देने का अधिकार नहीं है। ये क्यों लिखना पड़ा उसी किसी और को देने का? क्योंकि ऐसी चालाकी अपने मन में आ जाती है, रास्ते में पड़ी हुई चीज उठा ली, कोई ने देखा कि क्या हुई है, तुमने तो उठा ली, हमने अपने में थोड़ी उठाई, हम तो वो गुल्लक में डाल दें। जरूरत क्या थी आपको? या तो उसे उठाएं तो उसके मालिक तक पहुंचाएं, वरना आप उसे किसी को देने का अधिकार तो रखते नहीं है, आप तो उसका दान दे ही नहीं सकते, वो चीज आपकी है ही कहां। इंडिया और विभिन्न कंट्रीज में एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत बड़ा प्रयोग किया था, जगह जगह ये प्रयोग किया गया और पब्लिश भी हुआ कि सबसे कम लोग मिले इंडिया में बाकी लोग जगहों की अपेक्षा इस अपराध को करने वाले। हाँ, उन्होंने रास्ते में रुपयों से भरे जगह जगह बैग डाल दिए और वॉच करते रहे कि उन बैग को उठा करके कौन क्या करता है, उठाता भी है कि नहीं उठाता है। तो मेजॉरिटी ने उन बैगों को उठाया छीना करके और अपने पास ही रख लिया। बाकी देशों में ऐसा प्रयोग किया गया। भारत में 10 बैग में से 4 बैग किसी ने उठाए और ले ही गया, लेकिन 6 बैग जिन्होंने उठाए उन्होंने उसके मालिक को दिन भर अपना काम छोड़ करके खोजा और खोज करके उसके मालिक तक पहुंचाया। ये प्रयोग से सिद्ध हुआ कि यहां पर दूसरे की चीज हड़पने का या ले लेने का भाव अल्प है, नहीं के बराबर है। हम अपने भीतर झांक के देखें कि हमारी अपनी शाख किस चीज में है, हमारी प्रवृत्ति, हमारा आचरण, जिसमें कि अभिप्राय का खोटा नहीं है, सबके प्रति, किसी एक के प्रति नहीं है, सबके प्रति हमारे अभिप्राय में निर्मलता है, ये इस बात की सूचना है। इसमें हमारी प्रशंसा, इसमें हमारी शाख है। क्या इतना भी हम अपने जीवन में नहीं कर सकते? चाहे तो एक बार तय करने पर उसके लिए लोभ घटाना पड़ेगा। अगर देखें तो सारे तंतु उसी से, आशक्ति से जुड़े हुए हैं। त्याग तपस्या अनाशक्ति का काम है। आशक्त व्यक्ति त्याग तपस्या करेगा तब भी हृदय में आशक्ति लेकर के, जैसे कि आंचल में आग लेके कोई भागे तो स्वयं को भी और दूसरे को भी जलाएगी। इसलिए त्याग इतना ही जितनी की व्यक्ति। जब भी हम वास्तव में कोई व्रत नियम इस तरह का अंगीकार करें, अचोरी या कि उसका परिमाण करें, तो हम सावधानी रखें कि मेरे भीतर के अभिप्राय में परिवर्तन आया है कि नहीं आया। मेरा सो मेरा, लेकिन तेरा भी मेरा, ये जो भाव है, मेरा सो मेरा, ये स्वस्थ मानसिकता का प्रतीक है। वैसे तो देखा जाए तो उससे भी ऊपर उठना चाहिए कि यहां मेरा है क्या, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो मैंने अपने परिश्रम से अर्जित किया है वो मेरा, लेकिन जो मैंने अपने परिश्रम से अर्जित ही नहीं किया, दूसरे ने परिश्रम किया है उसे भी मैं अपना मानूं? वेल्थ विदाउट वर्क इज सिन। गांधी जी ने 7 प्रकार से पाप को डिफाइन किया, उसमें से पहले नंबर रखा है कि धन संपत्ति जो बिना परिश्रम के अर्जित की गई है वो सब पाप है। अब जरा सा विचार करें, अचोरी अनुव्रत को अभी छोड़ो, अभी तो चोरी का जो अपराध है, चोरी का पाप अलग है, चोरी का अपराध जो कि व्यर्थ है कितने रूपों में हम करते हैं, इस पर विचार कर ले थोड़ा। क्योंकि भीतर अगर भाव पड़ा है तो वो भाव बाहर इतने सारे रूप अपने दिखाता है, समझ नहीं पाते अपन। अपन तो सोचते नहीं हम कहां, हमने थोड़े किया, लेकिन जो हमने बिना परिश्रम के धन संपदा अर्जित किया है वो सब हमारा पाप ही है। ये जितनी भी चीजें, गैम्बलिंग, गांव पर लगाने वाला मामला, वो क्या है? बिना परिश्रम के धन संचय की प्रवृत्ति है। जितनी भी ये, अब तो धर्म के क्षेत्र में भी होने लगा, कितने रुपए की दान राशि लिखवाओ फिर गुल्लक में डाली जाएगी, उसमें से फिर एक निकाली जाएगी, दर तो होती रसीद तो 500 की कटवाई थी, अगर जो उनको नंबर निकले आए तो खूंपा जो 5000 रुपयों का अभिषेक को मौका है वो मिले। ये क्या है? विचार करना, मैं और कुछ कह नहीं रहा हूं आपसे। ये क्या चीज है, हम किस तरफ जा रहे हैं? वो जो 4500 रुपए हमने नहीं दिए और 500 रुपए देकर के और वो प्राप्त कर लिया जो 5000 रुपए त्याग करके प्राप्त होने वाला था, हमने किया क्या है? चुराए हैं 4500 रुपए, ये ध्यान रखना। एकदम शुद्ध समझ में नहीं आता कि क्या किया है मैंने। जिस चीज का जितना परिश्रम था उसका उतना परिश्रम नहीं चुकाना, अपने घर में काम करने वाले को ठीक ठीक परिश्रमिक नहीं देना, ये क्या चीज है? ये चोरी का एक रूप है। हाँ, ये समझ में नहीं आता सहसा, जो हमने जितनी मेहनत की है उतना ही लेना, उससे अधिक नहीं लेना दूसरे से। आकांक्षा भी नहीं रखना कि मेरी मेहनत भर का दे, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। तब कहलाएगा ये व्रत। व्रत लेना तो बहुत आसान है भैया, हाँ कई बार वैसे कठिन है, बहुत साहस चाहिए, लेकिन जिनने ले लिया है उनके लिए सावधानी बहुत चाहिए। लेने के लिए साहस चाहिए, लेकिन व्रत का निर्वाह करने के लिए सावधानी बहुत चाहिए। ऐसे दिन भर में कितने मौके आते हैं कि जो चीज हमारी नहीं है उसको हमारी कैसे हो जाए, इस तरह का भाव मन के भीतर आया, यानी चोरी की शुरुआत हो गई। ये चीज कितनी अच्छी है, मुझे मिल जाती, अब इसको कैसे प्राप्त करूं। एक जगह तो मैंने सुना था कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आपकी ये चीज बहुत सुंदर है, तो वो लोग फौरन उस चीज को उसे भेंट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपने अपने मन में तो इस चीज को पाने का भाव कर ही लिया, आपने चुराई ली, ले लो आप। हाँ, इतना इतना माइन्यूट है। जो मेरा नहीं है उसे मैं अपना मान बैठूंगा तो यही चोरी है। हालांकि ऐसा नहीं मानना, ये शरीर, शरीर के बारे में जरा सा सूक्ष्म में ये प्रश्न उठाया आचार्य भगवंतों ने कि इस तरह से तो फिर शरीर देह मेरी नहीं है तो मैं उसे अपना मानता हूं, ये भी चोरी है। कहते हाँ, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यह भी है। वो जो कर्म है जो मैंने बांधे हैं अपने, उनको हालांकि कहीं मैं किसी से चुराने नहीं गया, पर वास्तव में जो मेरे स्वरूप के विपरीत है उनको भी अपना मानना, ये मेरी अज्ञानता है। इतना सूक्ष्म विचार आध्यात्मिक दृष्टि से अचौरी के बारे में किया गया है। और सामान्य रूप से तो किसी और का जिसमें पोजेशन है, किसी और की जिसमें मालकियत है, उस चीज को हम ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, लेने का विचार अकेले लिया था, विचार अकेला किया है, तब भी वह विचार हमारे जीवन में चोरी के रूप में और हमें कर्म बंध में कारण बनेगा। हम चाहे सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं करें, इस तरह का भाव अकेला कर लेते हैं। कितने लोग इस तरह की प्रक्रिया वर्तमान में भी और नहीं समझ पाते हैं कि क्या कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा है कि चोरी स्वयं नहीं करना, लेकिन दूसरे को चोरी के लिए प्रेरित करना। चोरी के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहे हैं, पर जानते हैं कि ये चोरी का माल है, उसे भी खरीद लेना कमती कीमत में। मिलता है कमती कीमत में, मिलता है तो पता लग जाता है कि हाँ, ये कमती कीमत पे दिया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से खुद का नहीं है। जैसे उदाहरण आता है ना, हंसी आ जाएगी आपको, हमको तो याद आ गया तो ही मन में लग रहा है कि ऐसी तो अपन करते हैं। हाथ में क्या आता है ये थोड़ी समझ में आता है, तो लगता है उस समय हाथ में आपको बहुत मालूम पड़ता। एक व्यक्ति ने किसी का घोड़ा चुरा लिया था, घोड़ा, तो फिर बाद में उसने सोचा कि बाजार में चल के बेच दे, तो उसके मन में आया कि अगर सस्ते मैच है तो लोग समझे कि चोरी को हुई है, सोने कीमत बढ़ा के मैच कि 1,000 रुपया का घोड़ा है। घोड़े सामान्य रूप से होते थे बाजार में, बिक रहे थे 500, 700, 800, 800 को, लेकिन इसके 1,000 का घोड़ा बेच रहा तो लोग कहते थे भाई ऐसी कौन सी विशेषता, कहते है विशेषता। अब जो थोड़ी कह सकता तो चुरा है, जो विशेषता है थोड़ी कीमत ज्यादा है, चलो टूट समझ नहीं पा रहा, लेकिन कैसे भी करो भीतर का काट तो जो है बाहर देर सवेर प्रकट हो ही जाता है। अपन तो स्वयं उसके साक्षी होते हैं, दूसरा तो जब हो गए सो हो गए। एक नामी चोर था, वो समझ गया कि जी नया नया आया है अभी, समझ गया, वो तो सब समझते एक दूसरे को, समझते अपन खुद समझते हैं। अपन नए दुकानदार समझे सामान ले भी जाते, अपन खुद समझे तो अपन पुराने हो जाते हैं, उसने कहा कि यार ये तो तुम्हारा 1000 रुपए से भी ज्यादा का। अब वो सोचा कि यार ये पहला ग्राहक है, सब तो कह रहे थे कि 700-800 से ज्यादा का नहीं है, ये कह रहा है कि है तो 1000 से ज्यादा। कहती और चारों तरफ से उसने घूम करके देखा भी उसको, कहती है बहुत अच्छा। कहती लेना है क्या? कहती हाँ लेना तो है, बहुत मन है लेने का, इतना अच्छी चीज बाजार में तो कभी आती नहीं है और आज इतनी अच्छी चीज आई है, मेरा तो मन है। लेकिन एक बार मेरा मन इस चीज का है कि इसकी चाल तो देख ले, वैसे चाल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहती हाँ हाँ आप देख लो चाल। और उसने लगाम उसके हाथ में पकड़ा, उसने कहा ठहरो। वो लिए था हाथ में एक ठो लाठी गुटान, उसने कच्चा तुम पकड़ो जब तक हम इसको चाल देख के आओ। वो चाल देखने गया तो चाल उसने अच्छी देख ली कि अच्छी चाल, आपकी खोटी चाल थी उसमें भी जो है आपके साथ वैसी ही चाल चली। ये तो मैंने एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। यहां जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसका ठीक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, ये सहसा समझ में नहीं आता। जब लोग आए उसके पास कहने लगे भाई बिक गया क्या तुम्हारा? कहते हाँ बिक गया। अब क्या कहेंगे वो ही है। कहते बिक गया खेलने बहुत, तब तो बहुत मुनाफा हुई होगी। क्या मिला मुनाफा में? बहुत बिकते कहते बिक गए उठान मिली क्या मुनाफा? ऐसा है वो लाठी मुनाफे की, बस लो कितने को तो कहते दिखते को लो तो उठते ही को देखते। अपने जीवन में भी यही करते हैं, ऐसे ही होता है। थोड़ी देर को जरूरी लगता है कि हाँ मैंने दूसरे से ऐसा हाथ करके और मैंने इस तरह से 4 पैसे कमा करके दूसरे को थमा दिया। किसी दिन हमारे साथ भी वही सब रिपीट होता है जो हम किसी और के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। देर सवेर इस जीवन में नहीं अगले जीवन में, ये ध्यान रखना। इस एक जीवन अकेले का नाम नहीं है जीवन, वो तो कब से जुड़ा हुआ है, हमारा जीवन कब से चला आ रहा है और कब तक चलेगा। जब तक हमारी ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तब तक चलेगा, जब तक हम अपना हिसाब चुकता नहीं करेंगे तब तक चलेगा। ये हम रोज इस तरह की प्रवृत्ति, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उदाहरण दिया हुआ है वारिशैन महाराज का आचार्य भगवंतों ने, और साथ में चोरी के पाप का उदाहरण दिया है तापस का, सबका पढ़ा हुआ है। एक बार रिवाइज कर लें, वारिशैन सैनिक महाराज के पुत्र थे, सब जानते हैं, अत्यंत धर्मात्मा थे, लेकिन पुराना किया हुआ पाप किसके सामने नहीं आता। कल किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि कोई बहुत अपराध करने के बाद भी वर्तमान युग की कहानियों में आता है कि मुनि बन जाते हैं, तो क्या उनके पाप का उदय नहीं आता होगा, उनके पाप की निर्द्रा हो जाती होगी, बिना फल दिए वो चला जाता होगा? तो कुछ हद तक तो ये ठीक है, पूरी तरह से ठीक नहीं है ये। कुछ हद तक तो उन कर्मों का संक्रमण हो जाता है हमारे अपने परिणामों की निर्मलता से, जो असाता है वो साता में कन्वर्ट होकर के अपने उदय में आ जाती है, इतना तो होता है। लेकिन 100% कभी नहीं होता, गुण संक्रमण भी होता तो 100% नहीं होता, 20% तो बाकी रह जाता है, 80% कन्वर्जन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 80% होगा, 20% वो तो भोगना ही पड़ता। कोई कितना भी मुनि बन जाए तब भी उसको अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ता। वारिशैन का आचरण श्रेष्ठ है, चतुर्दशी के दिन इस स्मशान में और धर्म ध्यान में लीन है, और विद्युत चोर आकर के और उनके सामने जो चुराया हुआ हार है वो डाल के चला जाता है, पकड़े जाते हैं वारिशैन। महाराज सैनिक न्यायवान है, वो कहते कोई भी हो, मेरा पुत्र भी क्यों ना हो, अगर उसके पास ये पाया गया तो उसे ले जाया जाए और जो भी दंड देना है मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड दिया जाए, और सबको मालूम है कि मृत्यु दंड देने पर और वो तलवार जो है फूलों की माला बन गई थी। ये तो एक प्रतीकात्मक चीज है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में और जो कार्य नहीं किया है उस कार्य के लिए उसको दंडित किया जाए तो वो दंड उसको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, उसकी क्षति नहीं कर पाएगा। वो फूलों की माला इस बात की प्रतीक है। और विद्युत चोर ने जाकर के सच्चाई क्या है ये बता दी थी, ये सबको मालूम। क्या इस उदाहरण से कितनी बार की तरह होगा प्रतिमान योग का ये उदाहरण, क्या हमें कोई मैसेज नहीं मिलता कि कोई अगर हमारे पास चोरी की सामग्री भी लाता है तो हमारा फर्ज क्या है? आज ये चीज बहुत तेजी से चल रही है, हम स्वयं चोरी नहीं करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि कहां कहां किस चीज में चोरी है, इसके बावजूद भी हम उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं अपनी आजीविका के लिए, दो पैसों के लिए। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। एक और चोरी करने का ढंग है, हाँ वो बहुत छिपा हुआ चोरी करने का ढंग है, वो जो उस तापसी जैसा ढंग है। वो तापसी कैसा था, दिन भर एक पैर पर खड़ा होकर के और तपस्या करता था, हाँ, और चारों तरफ कभी कभी अग्नि जला लेता था और भीषण तपस्या करता था। लोग समझते थे तपस्वी, फेमस था वो तापस। लेकिन शहर में बहुत चोरियां हो रही थी, कुतवाल को राजा ने कहा कि चोर ढूंढ के लाओ एक महीने के भीतर, वरना तुम छुट्टी तुम्हारी। कोतवाल बहुत परेशान, उसने एक ब्राह्मण से अपनी तकलीफ बताई तो ब्राह्मण ने कहा कि सुनो तुम्हारे शहर में कोई तपस्वी तो नहीं रहता? तो नहीं है, हो सकती है, अभी बताऊंगा कि कैसे हो सकती है। अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोगों के भीतर की खोट मैं नहीं बताऊंगा, आपके भीतर आप खुद जानते हैं, वो आपको तो सिर्फ याद दिला दूंगा ना, मैं कहूँ आपकी आपकी खोट बताऊंगा, याद दिला दूंगा कि अरे बोले अपन ये कर रहे हैं अपन। हाँ वो वाकई में जो है उसने ऐसे ऐसे उदाहरण सुनाए और जब देखा उसने तो सचमुच वो जो दिन भर तपस्या करता था वही चोरी करता था, रात में जाकर के पकड़ा गया। और अपन क्या करते हैं, अच्छे धर्मात्मा अच्छे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग भी आज उनके चोरी करने का डांका डालने का ढंग अलग है। अब इतनी हिम्मत कहां है कि बंदूक लेके जाए और चार लोग लेके जाए अपना ग्रोह और दूसरे के यहां डांका डाले, अब तो डालने का दूसरा ढंग है। ये तानी मैंने बंदूक MBBS से मेरा बेटा 10 लाख रखो, 10 लाख रुपए रखो, इंजीनियरिंग है 5 लाख रुपए रखो, ये हमारे डांका डालने के ढंग है, सब कर रहे हैं ये। अब चुप मत देना और हंसो, देखें हंसते कैसे हंसते, कौन बचाऊंगा इससे, सब इसमें लिप्त है। और कहने के अकेले सिर्फ सुबह से शाम तक हो सकता है कि पूजा की हो, प्रवचन सुने हो, तब तो चर्चा में बैठे हो, लेकिन जब अपने बेटे के ब्याह के समय पर वो जिस तरह सौदेबाजी करते हैं उससे तो यही मालूम पड़ता है कि हमसे बड़ा कोई डांका डालने वाला यहां नहीं है। हमारे डांके डालने का ढंग अलग है, हमारे चोरी करने का, दूसरे को संकेत पहुंचा के उसके धन संपत्ति छीनने का, ये सीधा सीधा सा एक उपाय हमने ढूंढ लिया है। और अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानने वाले लोग, हो सकता है चोरी आनंद व्रत भी ले लिया हो, विचार करना। हाँ, और हो सके तो इस प्रक्रिया से अपने को बचाने की कोशिश करना। मैं कोई हाथ वात नहीं उठवा रहा हूं आपके कि आप सौगंध ले लें, नहीं नहीं, आप अपने भीतर से उठ जाएं तो हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पहले भी कह चुका आपसे, ये तो हम अपने भीतर अपनी चेतना को ऊंचा नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हम इतना सब जानने के बाद भी? और क्यों हम दूसरे को, आज कितने ऐसे केसेस होते हैं यहीं पर भी और सब दूर भी, और अपनी ही बेटी हो या दूसरे की बेटी हो, क्यों हम उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं? और इसमें बहुत सारा हाथ पिता का नहीं मां का भी रहता है, ये भी कह रहा हूं, आप सेफ नहीं है। सबसे ज्यादा हाथ माँ का रहता है अपने बेटे के मैरिज में धन संपत्ति और दहेज इत्यादि का, क्योंकि उसे शौक रहता है चार लोगों के बीच इस बात को दिखाने का कि मेरे बेटे के विवाह में इतना मिला, जबकि वो जानती है कि मैं भी किसी की बेटी हूं और जिसको ला रहा हूं वो भी किसी की बेटी है। इसके बावजूद भी एक माँ आई थी, मैं उदाहरण सुना दे रहा हूं, अचोरी वाले दिन मैं चोरी की व्याख्या ज्यादा नहीं करता, मैं इसी की व्याख्या करता हूं क्योंकि ये चोरी का ढंग हमारे बीच बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, सब समाजों में हो रहा है, और फिर उसके साथ साथ सामूहिक ब्याह करने की पद्धति शुरू कर दी तो उससे बचने के लिए। हाँ, क्या होने वाला उससे, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो कि सामूहिक ब्याह के बाद भी डाइवोर्स होते हैं, और सुसाइडल केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ गए इस तरह की प्रक्रिया में, क्योंकि बाद में मांगा जाता है। पटेरा का एक केस है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की, जबकि उनके पेपरों में भारी प्रशंसा की गई कि उन्होंने 1,000 रुपए लिया कुल विवाह में, लेकिन जिसकी बेटी ब्याही है वो मेरे पास कह के गया कि 4,00,000 रुपए मुझसे लिए हैं, और ये कहा है कि जिस दिन ये बात किसी को मालूम पड़ेगी उस दिन तुम्हारी बेटी घर नहीं लौटेगी। जैनी व्यक्ति है, जैनी जो पानी छान के पीता है और चीटी पर पैर रखने से पहले 10 रुपए सोखता है, उसकी बात कर रहा हूं। बहुत कठोर लगेगी थोड़ी सी, लेकिन हमारी इस दुष्प्रवृत्ति का इलाज तो हमें खुद करना पड़ेगा। ये धीरे 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 पनप रही है, बढ़ रही है, और मीडियम क्लास का जो व्यक्ति है वो दुविधा में है, क्योंकि बड़े लोग इस तरह का काम कर रहे हैं दिखाने के लिए, 15 लाख 20 लाख आजकल 50-50 लाख रुपए में शादी होती, उतना खर्च होता है शादी में, उस 50 लाख रुपए में तो 50 लोगों को अच्छा 1,00,000 का कैपिटल हो सकता है, रोजी रोटी मिल सकती है, ईमानदारी से वे अपना एक व्यापार कर सकते हैं, उतना जो है हम वो जो उस माँ की बात कह रहा हूं, मंडी में और मिली थी मुझे ना, 88 की बात है, मैंने जरा सी ऐसे ही चर्चा की थी, बस इतना ही कह के पूरा कर दूंगा, वो उदाहरण भी मुझे याद था कि सुना दूंगा, देखता हूं अगर बन जाएगा तो। बाकी वो घटना मुझे बहुत विचलित करती है, थोड़ा दुखी भी करती है। मैंने जनरल ऐसे ही कहा था कि क्यों लेना चाहिए, तो मालूम उन्होंने मुझे आधे घंटे लेक्चर सुनाया था, मैं चुपचाप सुनते भी रहा था कि क्यों नहीं लेना चाहिए, कितना खर्चा होता है, कोचिंग में हमने 1,00,000 रुपए इंजीनियरिंग के लिए और MBBS के लिए कोचिंग में इतने खर्च किए हैं, इतनी पढ़ाई में खर्च हुआ है, इतना परवरिश में खर्च हुआ है, मुझे सब उनने हिसाब दे दिया, तो क्यों नहीं लेंगे हम, लेंगे। और फिर आप तो कहते हैं कि समान होना चाहिए, तो जब एक भाई और एक बहन है तो पिता की संपत्ति आधी आधी होनी चाहिए, दो भाइयों में क्यों, एक भाई है और एक बहन है तो आधा आधा पिता को भी अपना, आधा बेटे को देना चाहिए, आधा बेटी को देना चाहिए, राइट बनता है। देखना आप लॉजिक देखिएगा, इतने लॉजिक दिए उन्होंने, मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने बाद में उनसे कहा कि बहुत अच्छा विचार है आपका, आपने सब कुछ तो हिसाब लगाया, आप हमारी तरफ से इतना और हिसाब लगाना कि वो जो 9 महीने तक आपने उसको पेट में रखा है और फिर बाद में दूध पिलाया है उसकी कीमत नहीं जोड़ी आपने, बोवर जोड़ देना, फिर पूरा ले लेना उससे। और ये कभी नहीं कोई चुका पाएगा, कोई बेटा आज तक इस बात की कीमत नहीं चुका सका, कोई संसार में नहीं चुका सकता है माता पिता का ऋण। जिस दिन ये चुकाने की बात आ जाएगी उस दिन तो धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने वो जो दूध पिलाया उसको आप चुका सकते हैं, उसकी कीमत चुका सकते हैं, नहीं चुकाई जा सकती। आप और बाकी चीजों की कीमत तो चुका सकते हैं, लेकिन क्या करें, आज हमारी आसक्ति, आज हमारे भोग विलास के लिए हम इतने लालायक हैं कि दूसरे की धन संपत्ति पर हम ऐश करना चाहते हैं, दूसरे से 10,00,000 रुपए लेकर के और हम अपनी गृहस्थी बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा बेईमानी और क्या हो सकती, इससे ज्यादा और चोरी क्या हो सकती है आज के समय में। उस अचोरी अनुव्रत की बात तो करने वाले तो विरले ही कोई होंगे, अभी तो हम सामान्य रूप से इस चोरी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, इस भाव से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। भाई हमारे भीतर अगर सच्ची श्रद्धा है और आत्मज्ञान है, ये कसौटी है, अगर वास्तव में सच्ची श्रद्धा है और आत्मज्ञान है तो ये कार्य हमारे द्वारा हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी हमारी श्रद्धा और हमारे आत्मज्ञान में कमी है, उस पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाता है। एक सामान्य सा सदगृहस्थ था, रोज सुबह दोपहर शाम सामायिक करता था, संतोष पूर्वक अपनी आजीविका चलाता था, व्यापारी था, अपने कंधे पर माल लेकर के जंगल के रास्ते से जाता था। सबने पढ़ी होगी ये घटना, जैनी आदमी की है, पंडित जी की है, उनका नाम तो याद नहीं है, मोतीलाल या इस तरह का कुछ नाम था, कलकत्ते के पंडित जी थे। और वो जाते थे और अचानक एक दिन जो है अपना माल लिए हुए हैं और शोर हो गया और व्यापारी भागे भागे कि लुट गए, आगे जाकर के जो है डाकू हैं, अब बचाओ अपना माल। तो इनके पास तो बहुत माल था, पोटली थी पूरी, आजू बाजू देखा क्या करें, सामने एक झोपड़ी दिखाई पड़ी, देखें जाकर उसमें कौन है। तो झोपड़ी में माला हाथ में लिए एक बाबा जी बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। जाकर के उनके निवेदन किया कि भगवान आगे जाकर के चोरों का डाकुओं का बहुत भय है जी, हमारा माल है आप रख लो, इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और क्या हो सकती। उनने इशारा किया कि उसमें रख दो, वहां उस कोने में। बोले नहीं वो बाबा जी, कोने में रख दो। कोने में रख दिया निश्चिंत होकर के और अपने पेड़ के नीचे धर्म ध्यान करने लगे। लूटने वाले आए तो उनने देखा कुछ नहीं, इसके पास क्या करना, चले गए। सो वो पेड़ के नीचे बैठे हैं और सब जितने डाकू थे वो उसी झोपड़ी में चले गए। उसी झोपड़ी में गए तो अब उसने सोचा कि अब तो लूटे अपने, फिर भी जाके एक बार देख तो ले। सो झांक करके भीतर देखा तो वो जो बाबा जी थे वो तो डाकुओं के सरदार थे। सुनना, ज्यों के त्यों बैठे हुए थे और सब डाकू उनसे हाथ जोड़ करके जो जो धन लाए थे उसके बंटवारे के लिए कह रहे थे। और वहां जो पोटली रखी है उस पोटली की तरफ बार बार इशारा करके कह रहे थे कि वो पोटली भी हम सबको बंटनी चाहिए। तो वो सरदार कह रहा था कि हाथ मत लगाना उसको। इतना सुनते ही व्यापारी की जान में जान आई और जाकर के हाथ जोड़ के कहा, बाबा जी मेरी पोटली क्या मुझे मिल जाएगी? उठा ले व्यापारी अपनी पोटली, उठा ली, वापस ले जाने लगा तो बाकी डाकुओं ने कहा कि ऐसा क्यों? तो सरदार ने मालूम क्या कहा, इसने डाकू के पास नहीं रखी थी सुरक्षित पोटली, इसने बाबा जी के पास रखी थी और मैं जब बाबा जी की तरह इसकी पोटली रख सकता हूं तो इसकी सुरक्षा भी कर सकता हूं, इसके विश्वास को इसकी श्रद्धा को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। और हम अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के विश्वास को कितनी बार नष्ट करते हैं अपनी इस दुष्प्रवृत्ति से, कभी विचार किया? मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानने वाला हूं, मैं किसी के दिल दुखाने के लिए किसी से धन संपत्ति नहीं लूंगा। वो सब चोरी है जिसमें कि दूसरे का दिल दुखता है, दूसरे का मन नहीं है, फिर भी उसे मजबूरी में देना पड़ता है और वो देता है, फिर मेरे सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का क्या हुआ? उसने तो ये माना था कि ये मेरे आचार विचार वाले हैं, इनको अपनी बेटी दूं, इन पर विश्वास करके कि ये सच्चे देवगुरु शास्त्र, और इसी का परिणाम है, दुष्परिणाम है कि आज जो है भिन्न आचार विचार वाले को भी लोग बेटी देने लगे हैं कि चार पैसे कम लगेंगे, अपने में करो तो भाई मांगेंगे। और अब इतनी उम्र हो गई 28 साल की, अब तो जहां बने सोते कर दो। आप इस पर विचार करना, मैं कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, ये अपना एनालिसिस खुद अपन को करना चाहिए। बहुत व्रत इत्यादि अपन करते हैं और लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए व्रत इत्यादि, लेकिन अपनी इस प्रवृत्ति पर भी और जरा सा विचार करके और इसमें संशोधन करना चाहिए, इसमें परिष्कार करके, तभी हम वास्तव में अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन में निर्मलता लाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
आंख बंद करके जिनेंद्र भगवान के ध्यान में बैठेंगे। हाँ सुनिए, उसके ध्यान की श्रृंखला में सर्वप्रथम आते हैं अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी साक्षात श्रीमंदिर भगवान विदेश क्षेत्र में विराजमान है, हमें उन्हीं के दर्शन के लिए चलना है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बस आपको कमाई का प्रसाद वर्णन करते जाना है। हाँ, और अपनी चेतना को जागृत रखिएगा। अराई द्वीप के 15 कर्म भूमि में रहने वाले जिनेश्वरों को, तीर्थंकरों को, केवली भगवंतों को, अंतर केवली भगवंतों को, सामान्य केवली को, मूर्ख केवली को, उत्सर्ग केवली, अनवर्ष केवली, बंधुओं को, धर्माचार्यों को, धर्म उपदेशकों को, 64 विद्धिधारी महामुनियों को, द्वार शाम रूपी अमृत का पान करवाने वाले उन तीन कम ना करवा महामुनियों को भाव वंदना सहित मन से, वचन से, काया से बारंबार नमस्कार। हाँ अरिहंत देव, सर्वप्रथम अरहत मेरे ज्ञान में साक्षात छलक रहे हैं। हे अरिहंत परमेष्ठी, आप कैसे हैं प्रभु? आप अपनी आत्मा की ख्याति हैं, बाकी जीवन की ख्याति हैं, निज स्वरूप की ख्याति हैं, चार भारतीय कर्मों के नाश करता है,
स्वामी ने नमः। ओम अरहम श्री मैंने सुना था माता जी से कि भगवान आप विदेश में तुम्हें विराजमान है, मैं आ रहा हूं प्रभु, मुझे विश्वास हो गया है तुम्हारी भक्ति से, छोटे छोटे क्या बड़े छोटे संकट भी टल जाते हैं, देखो ना मुझे देख लिया प्रभु,
नाल रंग की, नारिक की मणि और पांच कोस से धनुष की
रूप आती है मैं शरण है, इतना सुंदर, इतना विशाल, कुबेर ने बचा है इसे, लेकिन मुझे इसकी सुंदरता नहीं। अरे जिसकी वजह से इतनी सुंदरता इसकी बढ़ गई है वो कितना सुंदर होगा। आज तो मेरी आंखें चुंधिया नहीं है, कौन सा दिव्य प्रकाश है यहाँ। परमात्मा है जो 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 तिखार ज्ञानेश्वर तुम्हारी जो है अनंत जीवन में मैंने नहीं पाया, और स्थानीयनाथ मेरे समय तुम्हारे परम औदारिक तन की धारी हो। हे प्रभु, मैं अपने जीवन के समस्त दुराचारों को तुम्हारे चरणों के समीप छोड़कर भगवान की दिव्य ध्वनि खेल रही है। हे नाथ, आपकी दिव्य ध्वनि को सुनकर के अनेकों भव्य जन्मों की जाति ने हाथ में ख्याल रखकर मनोभर वापस पीछे और हे प्रभु, आपके चिंतन मात्र से इतना सुख मिलता था और आज मैं साक्षात देख रहा हूं। नहीं मैं तो मनोभर उस माया जाल में बिल्कुल नहीं भटकूंगा। हे नाथ, आपकी दीपवाणी को सुन करके मुझे भी जैनेश्वर दीक्षा प्रदान कीजिए। एक एक करके सारे वस्त्र उतरते चले जा रहे हैं, उस निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हो गया नाथ। हे भगवत, आप सिर्फ विचार करना था, धन्य हो गया नाथ। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी इस विपराक शक्ति को पाकर हे नाथ मेरी नाम मस्तान में है। पार कर दो प्रभु, और मेरी निर्गंत अवस्था में भगवान केशव का निंचन। हाँ भगवान, तुम्हारे ही जैसी शुद्ध आत्मा की प्रतीति मुझे भी हो रही है, जिसको पाने के लिए बहुत भोर से तरस रहा था। यह पूर्व अवसर है आपके निमित्त से मैंने अपने जीवन को धन्य बना लिया नाथ। इस एक क्षण में भी कितना आनंद बरस रहा है, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूं, कितना आनंद, कितना सुख। हाँ भगवत, अब तुम्हारे चरणों से कभी लौट के जाना नहीं चाहता। ऐसी नहीं जाऊंगा भगवत, नहीं जाना चाहता। भावों से लेकिन विश्वास से मुझे, मैं भरत क्षेत्र का जन्मा हूं, आपके इस विजय क्षेत्र में आहार ग्रहण नहीं कर सकता ना, जाना पड़ रहा है। लेकिन भगवत, बहुत अफसोस है, ऐसा सुखद वातावरण छोड़ करके उस माया जाल में फंसते नहीं जाता हूं, पर जा रहा हूं भगवान, जा रहा हूं मैं आपके श्री चरणों में, आपके चरणों का स्पर्श करके बारंबार उस धूली को अपने माथा पर लगाता हूं, अपने माथे पर लगाता हूं। तो है ना, बस इतना ही नसीब था, मैं तो ज्यादा करके हमेशा के लिए रहता हूं, लेकिन जा रहा हूं प्रभु। हाँ, ऐसे ही प्रतिदिन आपके भाव से वंदना करूंगा, भाव से आपके दर्शन करूंगा, कहीं पापों में उलझ ना जाऊं प्रभु। निरंतर शुद्धोपयोग की दृष्टि बनी रहे, आत्मा के ही इस बगीचे में टहलता रहूं और इस संसार के भोग विलास में न भटकूं, बस इसी कामना के साथ जा रहा हूं प्रभु, जा रहा हूं। ऐसे अनंत परमेष्टि जितने हो चुके वो हो रहे हैं, वह भविष्य में आगे होंगे, उनको मन से, वचन से, काया से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब
पंच परमेष्ठी के ध्यान की श्रृंखला में हमारे दूसरे परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी आते हैं। आप कैसे हैं प्रभु?
मेरे ध्यान में आप साक्षात झलक रहे हैं, जिनको पाने के लिए मैं बहुत दूर से लालायित हो रहा था। आज मेरे ज्ञान में आप साक्षात झलक रहे प्रभु। दायित्व के इस क्षेत्र में कुल विराजमान है पद्मासन से, कुल खड़गासन से, लोकाग्र में सबका मस्तक समान है और आप सब अपनी शुद्धात्मा में तल्लीन है। आप कैसे हैं प्रभु? तप संयम चारित्र नए सुसिद्ध है, अतीन्द्र सुख को भोगने वाले हैं। आपके गुणों का वर्णन करने में जिन्हारी माफी असमर्थ है, वो गांधी देव भी आपकी महिमा को न जा सके, ऐसे समस्त भूत भविष्य वर्तमान संबंधी अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों को मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आगे आते हैं आचार्य परमेष्ठी। आप नमस्कार हो, कैसे हैं वे आचार्य, क्या है?